जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। सच्चा एवं शाश्वत सुख जो गुरु सेवा योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है, नाशवान बाह्य पदार्थों से नहीं। जन्म मृत्यु के लगातार चलने वाले चक्र से छूटने का कोई उपाय नहीं है क्या? सुख दुख हर्ष शोक के द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिल सकती क्या? सुन हे शिष्य, इसका एक निश्चित उपाय है। नाशवान विषयी पदार्थों में से अपना मन वापस खींच ले और सद्गुरु सेवा योग का आश्रय ले। इससे तो सुख दुख हर्ष शोक जन्म मृत्यु के द्वंद्वों से पार हो जाएगा। मनुष्य जब गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जो व्यक्ति गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है उसे इस लोक में एवं परलोक में चिरंतन सुख प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग उसके अभ्यासु को चिरायु एवं शाश्वत सुख प्रदान करता है। परम शांति का राजमार्ग गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शुरू होता है। लगभग 150 वर्ष पहले की बात है, पंजाब के अमृतसर जिले के लोना चमारी नामक गांव में एक परमहंस बाबा रहते थे। 4 साल का एक ब्राह्मण बालक रामदास जब भी उधर जाता तो देखता कि गांव के लोग बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। तब उसे बड़ा आश्चर्य कि आखिर सभी लोग इन बाबा को प्रणाम क्यों करते हैं, गांव में और भी लोग हैं पर किसी को हर कोई प्रणाम नहीं करता। लगता है बाबा बहुत बड़े आदमी हैं। इस प्रश्न के निराकरण के लिए उसे किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं होता था। उसने सोचा कि सबसे सरल उपाय है बाबा जी से ही पूछ लो। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा आपको इतना बड़ा बनाने वाली कौन सी चीज है जिस कारण हर रोज चारों ओर से इतने लोग आ आकर भक्ति पूर्वक आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा ने कहा, बेटा मैं हमेशा राम नाम जपता हूं। राम नाम ने ही मुझको इतना बड़ा बनाया है। बालक ने कहा, मैं राम नाम लूं तो क्या मैं भी इतना बड़ा बन सकता हूं? बाबा ने कहा, हां बेटा राम नाम लोगे तो तुम भी इतने ही बड़े हो जाओ। बाल मन में यह बात घर कर गई। तब से वह मन ही मन राम नाम का जप करने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध महात्मा रामदास काठिया बाबा हुए। बालक का यथा समय उपनयन संस्कार यानी जनेऊ हुआ। और फिर उसे पढ़ने के लिए दूसरे गांव में गुरु के यहां भेज दिया गया। तीक्ष्ण बुद्धि बालक बहुत थोड़े समय में पाठ याद कर लेता, फिर एकांत में बैठकर राम नाम का जप किया करता। एक दिन छात्रों ने गुरुजी से शिकायत कर दी कि रामदास पढ़ाई नहीं करता है, जब देखो तब माला ही फेरता रहता है। गुरुजी ने रामदास को बुलाकर पूछा, क्यों रे, यह माला फेरने आता है कि पढ़ाई करने आता है? रामदास ने कहा, गुरुजी, मैं अपना पाठ बराबर पढ़ता हूं, आज्ञा हो तो सुनाओ। पुस्तक मंगवाकर गुरुजी ने प्रश्न पूछा। रामदास ने ठीक उत्तर दिया। शिकायत करने वाले छात्रों को डांटते हुए गुरुजी ने कहा, रामदास अगर अपना पाठ याद करके माला फेरता है तो तुम लोग क्यों चिढ़ाते हो? इस घटना के बाद फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर रामदास घर लौट आए। कुछ दिन बाद वे गायत्री मंत्र सिद्ध करने के लिए विधिपूर्वक जप करने लगे। 100,000 मंत्र जप हो जाने पर एक दिन देवी ने आकाश मंडल में प्रकट होकर आदेश दिया, वत्स, शेष जप तुम ज्वालामुखी में जाकर पूरा करो और वर ग्रहण करो। रामदास ने कहा, मां, संतान पर तुम्हारी कृपा प्रतिक्षण बनी रहे यही प्रार्थना है। देवी ने तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। इस घटना के बाद ज्वालामुखी जाते समय रास्ते में एक दिव्य कांति ज्योतिर्मय पुरुष मिले। रामदास ने कहा, महाराज मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, वत्स, यह कठिन मार्ग है। शिष्य बन जाना सरल है पर साधना और त्याग दुरह होता है। कुछ दिन ठहर कर देख लो। रामदास का श्रम, लगन और निष्ठा देखकर साधु ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इधर पुत्र के संन्यास की खबर सुनते ही पिता आए और उनके गुरुदेव से अनुनय विनय करके कुछ दिनों के लिए रामदास को घर ले गए। अत्यधिक स्नेहवश माता सदा रोती रहती थी, जिससे साधना में विघ्न होता देखकर रामदास घर से निकल गए और सीधे गुरुजी की सेवा में आ गए। फिर जीवन भर वे गांव वापस नहीं लौटे।